السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد المعبد الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. سیدی سرکار اعلی حضرت امام احمد رضا علیہ الرحمت و رضوان بارگاہ غوثیت میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے عرض بردار ہیں، احد سے احمد اور احمد سے تجھ کو، احد سے احمد اور احمد سے تجھ کو، سب کن مکن حاصل ہے یا غوث. میرے دوستو اور بزرگو، اللہ تعالی نے دنیا میں لاکھوں کروڑوں چیزیں پیدا کی ہیں اور اتنا بڑا پروجیکٹ اس نے انسانوں کے لیے لگایا. قرآن فرماتا ہے کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، وہ خدا جس نے زمین میں جو کچھ ہے تمہارے لیے پیدا کیا. ثم استوى الی السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شیء علیم. زمین کی تخلیق اور بناوٹ کے بعد اس نے ارادہ فرمایا اور ٹھیک اس نے سات آسمان بنائے. زمینی اور آسمانی پروجیکٹ یہ انسان کے فائدے کے لیے، انسانی زندگی کو خوشحال بنانے کے لیے پروردگار عالم نے پیدا فرمایا. لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ انسان کو عقل بھی دی، شعور عطا فرمایا، علم و ہنر سے آراستہ فرمایا، تاکہ وہ اللہ کی پیدا کی ہوئی چیز کو سلیقے کے ساتھ استعمال کر سکے. انسان جب اللہ کی اس مخلوق سے فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کے سامنے ایک مقصد ہوتا ہے، کوئی کام ہوتا ہے، اور اس مقصد کے لیے اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے اس کو اسی انداز سے بناتا ہے، سنوارتا ہے، ڈھالتا ہے، اور پھر وہ اپنے مقصد کے لیے اس کو یوز اور استعمال کرتا ہے. یہ لاؤڈ اسپیکر کا پورا سسٹم ہمارے پاس موجود ہے. یہ اسٹیل اللہ تعالی نے زمین میں پیدا فرمایا، اس کو وہاں سے نکالا گیا، تو ویسے ہی اسٹیل لاؤڈ اسپیکر نہیں بن گئی. اس لوہے کو گلایا گیا، دائی میں اسے ڈھالا گیا، اور جو کل پرزا اور جو پارٹ جیسا چاہیے اس کو اسی شکل میں بنا کر اور پھر اس سسٹم کو کمپلیٹ کیا گیا. तब जा करके एक लाउड स्पीकर यूजफुल बना, आप उससे फायदा हासिल कर रहे हैं। पहाड़ अल्लाह ताला ने पैदा फरमाए, किस्म किस्म के पत्थर हैं उसमें, आप पत्थर को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो पत्थर की चट्टान काट करके और उसका इस्तेमाल आप नहीं करते, बल्कि उस पत्थर की चट्टान को काटते हैं और जो चीज आपको बनानी है उसका एक खाका अपने जहन में तैयार करते हैं और उसका एक मॉडल अपने इस्तेमाल और मकसद के लिए तैयार करते हैं। मसलन बिल्डिंग आप बनाना है आपको, आप उसके लिए ईंट बनाना चाहते हैं तो ईंट का साइज, ईंट की शक्ल, ईंट की एक सूरत होती है और उसको आपने तैयार किया और फिर उसको एक बिल्डिंग में आपने इस्तेमाल किया। परवरदिगार आलम ने जंगल में दरख्त पैदा किए, लकड़ियां पैदा की, अब उन लकड़ियों को आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो दरख्त काट करके आप फौरन उसका इस्तेमाल नहीं करते। अगर चेयर बनानी है तो किसी और पेंटर को तलाश करते हैं जो चेयर बनाने का हुनर रखता है, वो आपके लिए कुर्सी बनाता है फिर आप उस पर बैठते हैं। अगर उस लकड़ी से आप अपने बिल्डिंग के डोर्स और विंडोज बनाना चाहते हैं तो उसको उसी शक्ल में उसी साइज में काट करके आप डोर्स और विंडोज तैयार करके अपने घर में लगाते हैं। बेहंगम बेसलीके किसी चीज का इस्तेमाल आपके लिए मुफीद नहीं हो सकता। जब अल्लाह की पैदा की हुई चीजों में से किसी चीज को आप अपने मकसद के लिए जब इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ये जरूरी है कि एक हुनरमंद, एक कारीगर, एक मैकेनिक, एक फनकार को आप तलाश करते हैं जो आपके मकसद के मुताबिक उस चीज को बनाता है, संवारता है, तब वो चीज जाकर के अच्छी होती है, खूबसूरत होती है, कीमती होती है, इस्तेमाल के लायक होती है। बेढंगे और बेसलीके तरीके से कोई चीज आप इस्तेमाल करेंगे तो उसका आपको फायदा नहीं होगा, बल्कि बसा औकात आप नुकसान के गड्ढे में गिर जाएंगे। ये जहन में रखने के बाद मैं अर्ज करना चाहता हूं, अल्लाह की मखलूक ये इंसान भी है। जिस तरह लकड़ी जंगल में अल्लाह ने पैदा की और उसके इस्तेमाल के तरीके आपको सिखाए, अक्ल और शऊर दिया, ऐसे कारीगर और बनाने वालों को पैदा किया, आप उनके जरिए अपने मकसद के मुताबिक उन चीजों को बनवाते हैं और आप उसको इस्तेमाल करते हैं। ये छोटे छोटे बच्चे जो आज मदरसे कादरिया में पढ़ रहे हैं, स्कूल में जिन्हें संवारा जा रहा है, ये आपकी गोद के नर्सरी पौधे हैं, तो परवरदिगार आलम ने इन्हें दिया है, अब इनको संवारना है। या बड़ा हो गया है आदमी, बिगड़ गया है, तो उसके बिगाड़ को सुधारना है, तो ये सुधारने के लिए भी किसी हुनरमंद की जरूरत है, किसी फनकार की जरूरत है। इस इंसानी जंगल को जो ही इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, इन इंसानों को इस्तेमाल करना है तो इन्हें सजाना पड़ेगा, संवारना पड़ेगा, इनके बिगड़े हुए एंड बेंड मॉडल को सीधा करना पड़ेगा, इनकी जिंदगी के में नक्शो निगार पैदा करने पड़ेंगे, इन्हें रोशन करके पॉलिश करके इन्हें चमकाना पड़ेगा, तब इसकी एक कीमत इंसानी मार्केट में होगी और इनके खरीदार फिर रोशो खाजा बनेंगे। ये इंसानी जंगल है, इसको संवारना है, बनाना है, चमकाना है, नक्शो निगार से आरास्ता करना है। मैं अक्सर मिसाल देता हूँ, मेरी जल्दी की जल्दी, ये एक स्टिक है, आपको अच्छी लगेगी, चमक रही है, एक मीटर की लकड़ी है। ये लकड़ी अगर कहीं रोड पर पड़ी रहे तो आने जाने वाला कहेगा ये रोड पर पड़ी है, कोई इसमें उलझ करके गिर सकता है, तो एक लात मार कर ठोकर से फुटपाथ पर इसको डाल देगा। उसकी कीमत इतनी। अगर किसी को जलाने की जरूरत है तो आके जाके एक मीटर की लकड़ी हाथ में लेकर गया और घर के चूल्हे में डाल दिया, ये जल गई। इसी की कीमत नहीं है, इसलिए कि ये जंगल से कटके आई है और ये किसी अच्छे फनकार कारपेंटर के हाथ में नहीं पड़ी, इसे रोड पर डाल दिया गया है तो इसकी कोई कीमत नहीं। अगर इस एक मीटर की लकड़ी को मार्केट में लेकर कोई आए कहे मैं इसको 2000 में बेचना चाहता हूँ तो लोग कहेंगे इसको मिंटन हॉस्पिटल पहुंचा, एक मीटर की लकड़ी और 2000 में कहीं कोई खरीदेगा? 10 रेंट में खरीदने के लिए तैयार नहीं है। अरे एक रेंट देने के लिए रेंट रेंट लकड़ी को कोई तैयार नहीं है, इसलिए कि ये यूं ही है, इसको किसी ने संवारा नहीं, इसको किसी ने ढाला नहीं, इस पर किसी ने पॉलिश नहीं की, तो सिर्फ वो एक ओनली स्टिक है, एक लकड़ी है, उसकी कोई इज्जत नहीं, कीमत नहीं। लेकिन एक होशियार कारपेंटर आया, उसने अपने हाथ में इसको लिया, लेकर घर गया और उसके बाद उसके पास जो हथियार और औजार हैं उससे उसने इसको रंगा दिया, इसके टेढ़ेपन को उसने सीधा किया, फुरदुरेपन को उसने साफ किया, उसका साइज बनाया, ऊपर से जरा मोटी और नीचे से जरा पतली, उस पर पॉलिश किया, चमकाया और फिर उस पर नक्शो निगार बनाए, उसमें एक हैंडल लगा दिया, नीचे स्लीप ना हो तो कुछ लगा दिया। अब उसके बाद अब ये मार्केट में आई तो बड़े बड़े शॉप के शोरूम में ये खड़ी होने के लायक बन गई। अब बड़े बड़े सेठ आते हैं, कितने में? उसने कहा 5000 में। कहा पैसे लो, ये दे दो मुझे स्टीक ले जाए। आखिर ये एक मीटर की लकड़ी अगर रोड पर होती तो लोगों की ठोकर में होती, जलाने वाला उसको जला देता, कोई उसको बचाने की फिक्र नहीं करता। लेकिन जब एक फनकार के हाथ में, एक आर्टिस्ट के हाथ में जब ये आ गई और उसने उस पर मेहनत किया और ये लकड़ी भी तकलीफ बर्दाश्त कर रही है, आरी से काटी जा रही है कुछ नहीं बोल रही है, रंधे से छीली जा रही है कुछ नहीं बोल रही है, गर्म गर्म पॉलिश उस पर लगाई जा रही है कुछ नहीं बोल रही है, ये रियासत और मुजाहिदे की मंजिल से गुजर रही। इसलिए कि अब ये किसी फनकार के हाथ में है, वो जैसा कहता है वैसे ही ये करने के लिए तैयार है। अब उस पर ये चमकदार नक्शो निगार आ गया, अब वो 5000 रेंट में बड़े बड़े सेठ उसको खरीदते हैं, और अगर किसी पीर साहब के हाथ में ये लकड़ी आ गई और उसका अकीदतमंद मुरीद पीर साहब ने कहा बड़ा बेटा ये संभाल, तो वो संभालता है, कैसे संभालता है? उसको जमीन पर नहीं फेंक देता है, सीने से लगा जानता है इस लकड़ी को ये इज्जत, ये मर्तबा, ये रुतबा मिल गया, और ज्यादा अकीदतमंद मुरीद है तो हल्लो हल्लो उसको किस देता है, चूमता है, मेरे पीर साहब का हाथ इस पर लगा। ये लकड़ी कितनी खुशनसीब हो गई, ये फनकार के हाथ में ऐसे ही है जैसे जिंदा बदस्ते मुर्दा, मुर्दा बदस्ते जिंदा हो। हर तकलीफ को उसने बर्दाश्त किया, हर अंदाज को उसने गवारा किया, लेकिन जरा सा चू से जा नहीं किया। इसको कुदरत ने ऐसा मकाम अता फरमाया कि मालदार भी इसको लेता है और पीर साहब भी इसको खरीदते हैं, आदमी दीन भी इसको हाथ में लेता है। अब ये मस्जिद पे मिंबर पर बैठने के काबिल बन गए, लोग इसे बोसा देते हैं, ये इसकी इज्जत सिर्फ ये है कि किसी बुजुर्ग के हाथ में आ गई, और इसकी कीमत इसलिए बढ़ गई कि ये किसी कारपेंटर के हाथ में आकर के और एक नमूने के तौर पर अच्छी खूबसूरत स्टिक बन गई। ऐ मेरे दोस्तों, इसी तरह इंसानी जंगल है, किसी के हाथ में हाथ नहीं देता, वो जहन्नम में जला दिया जाता। नमरूद जल गया, फिरौन जल गया, दौलत उसकी उसे बचा ना सकी, लेकिन बिलाल ने अपना हाथ मुस्तफा के हाथ में दे दिया तो अब वो जलाए नहीं जाएंगे, बल्कि उनका जो दामन पकड़ लेगा वो भी जहन्नम के बचाए। अब उसकी कीमत बिलाल की वो कीमत हो गई कि बद्र अच्छा है फलक पर न हिलाल अच्छा है, और चश्मे बीना हो तो दोनों से बिलाल अच्छा। क्यों? इसलिए ये हाथ की करामत है, ये हाथ की आबरू है, ये उसके फन का मुजाहरा है। इसलिए इंसान को सुधरने के लिए, जैसे लकड़ी को बनने के लिए अच्छे कारपेंटर की जरूरत है, ऐ इंसान तुम्हारे अंदर अल्लाह ने सब सलाहियतें अता फरमाई हैं, लेकिन खुद तुम अपने को संभाल नहीं सकते, इसलिए औलियाए किराम के हाथ की जरूरत है, उनके इल्म व फन की जरूरत है, उनके मुजाहिदे को बर्दाश्त करने की जरूरत है। ये बिगड़ा हुआ इंसान अब बिगड़ा हुआ नहीं रहेगा, जन्नत के शोकेस में इसे खड़ा कर दिया जाएगा। ये गौसो खाजा के हाथ में हाथ देने वाला इतना ऊंचा इतना बुलंद मकाम हासिल कर लेता है। चोर आता है मेरे गौस के पास, लेकिन चोर आया गौसे पाक के हाथ में आ गया। अब वो चोर जहन्नम में जलने वाला नहीं होगा, अब जन्नत के नक्शो निगार और शरीयत के नक्शो निगार से गौसे पाक उसको ढालेंगे। अब वो इतना ऊंचा हो जाएगा कि वक्त का अब्दाल और कुतुब बन करके उसकी पोस्टिंग हो जाएगी। ये हाथ की करामत है, इंसान के अंदर सलाहियत पैदा की है रब ने। और इन्ना करमकुम इंदल्लाह अत्काकुम का कुरान मजीद ने ऐलान किया है, तुम इन सबसे बुजुर्ग और बदतर रहोगे जबकि तुम में परहेजगारी और तकवा का मकाम हासिल हो जाए। और तकवा कब तुम्हें हासिल होगा? जबकि अल्लाह वालों के साथ हो जाओगे। इसलिए कुरान फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वकूनू मअ सादिक़ीन। ईमान वालों, अल्लाह से डरो, तकवा हासिल करो, परहेजगारी के रास्ते पर चलो, लेकिन साथ ही साथ ये ख्याल रखना कि किसी अल्लाह वाले के साथ हो जाना, औलियाए किराम और सच्चे बंदों के हाथ में हाथ दे देना, ये है इंसानियत के लिए औलियाए किराम की जरूरत। जिस तरह एक चेयर बनाने के लिए कारपेंटर की जरूरत है, आप ही आकर के आरी बसूला और आला लेकर के फुटुर फुटुर कहे तो बजाए कुर्सी बनने के वो कुर्सी हो जाए, किसी काम की नहीं रहेगी। ये तुम्हारा फन नहीं है। इस रूहानियत को संवारना, इंसान के अखलाक को निखारना, शरीयत के नक्शो निगार से उसे चमकाना, ये आपका काम नहीं है, ये उलमाए रब्बानी का काम है, ये गौसो खाजा की निगाह का काम है। इनकी दरसगाह और खानकाह में आकर रियाजत व मुजाहिदे की तकलीफ तो बर्दाश्त करता है, वो जन्नत में आला मकाम हासिल करता है। और जब उस पर कभी मुसीबत आती है तो रब्बुल आलमीन उसको फरिश्तों के जरिए बचाता है। जैसे इस शीत को अगर कोई चूल्हे में डालना चाहे तो हाफिज ज़ैनुल आबिदीन हाथ से पकड़ कर खींच रहे हैं, इसे जलाने के लिए नहीं बल्कि इसे बचाने के लिए बनाया गया है। हजरत शेख साहब अपने तालिबे इल्म को तमाचा मारेंगे, इसे जला रहा है, अब ये जलाने के लिए नहीं है, बचाने के लिए है। इसी तरह जब इंसान अपने आप को औलियाए किराम के और उलमाए रब्बानीन के हवाले कर लेता है, अब उसे कोई जलाएगा नहीं। और अगर फरिश्तों ने उसे कयामत में पकड़ भी लिया उसके जाहिरी गुनाहों के गर्दो गुबार की वजह से और मुस्तफा की निगाह पड़ी तो हदीस बताती है कि मुस्तफा उसे वापस करवा लेंगे और अपने शफाअत की चादर से उसके गुनाहों के गर्दो गुबार दाग धब्बे को साफ करके जन्नत के लायक बनाएंगे। औलियाए किराम की इसलिए जरूरत है, इसीलिए आला हज़रत फरमाते हैं के, वो कैसा ही सही है तो करीमा तेरा है तो करीमा तेरा बच सही
चोर
सही
मुजरिम नाकार सही
बच सही बुरा चोर सही
मुजरिमो
नाकार सही ऐसा ही सही या गौस है तो
करीमा
मैंने करीमा था हम कैसे भी हैं लेकिन आप ही के हैं और किस अंदाज के हैं दूर के हैं लेकिन हुजूर तो दूर नहीं है फरमाते हैं तुझ से दर और दर से सर और सच से है मुझको निस्बत मेरी गर्दन बैठी है दूर का डोरा दूर की निस्बत भी औलियाए किराम की निजात का जरिया है निजात का वसीला है इसलिए औलियाए किराम की हमको जरूरत है हम अगर जहन्नम से बचना चाहते हैं इन अल्लाह वालों का जिक्र करो और उनका जहां जिक्र होता है हुजूर फरमाते हैं कि वहाँ अल्लाह की रहमत का नुज़ूल होता है अल्लाह वालों का जिक्र अल्लाह का जिक्र है आज आप गौसे आजम के जिक्र की महफिल में बैठे हैं ये जिक्र गौसे आजम भी है और जिक्र रसूल आजम भी है और जिक्र परवरदिगार आलम भी सबके जिक्र का मजमूना है जिसमें आज हम बैठे हैं हमारी निगाह नहीं देख रही है कि रहमत की सावन भादो बरस रही है बारिश हो रही है हम नहीं देख पाते इसलिए कि हमारी आंख सिर्फ बाहर को देखती है रूहानी अंदाज को हमारी निगाह नहीं देखती लेकिन लाइट दो किस्म के होते हैं एक लाइट और रोशनी ये है जो तुम्हारी मस्जिद के और पेट को बता रही है यहाँ लाउड स्पीकर है ये बता रही है ये लाइट तुम्हारे टोपी के रंग को और लिबास को बता रही है सिर्फ जाहिर को जाहिर कर रही है लेकिन इसी दुनिया में एक ऐसा लाइट एक ऐसी रोशनी है जो सिर्फ ऊपर को नहीं बताती अंदर को भी बताती वो रोशनी कौन सी है एक्सरे मशीन जो मेडिकल जहां दवाखाना है डॉक्टर होते हैं वहाँ एक एक्सरे मशीन लगी रहती है एक स्ट्रेचर जैसे तख्ता रहता है और ऊपर एक्सरे मशीन की आंख रहती है वो देखती रहती है मरीज को बीमारी लग गई माँ बाप और मरीज भी नहीं जानते ये बीमारी कैसी है लीवर में पेन हो रहा है डॉक्टर के पास गया डॉक्टर ने देखा कहा लेट जाओ स्ट्रेचर पर आपको लेटा दिया एक्सरे की आंख आपके सीने और चेस्ट पर फिट कर दिया और मरीज से कहा सांस लो रोक लो मैं एक दो तीन कहता हूं सांस रोक लेना वो खड़ा हो गया कहता एक दो तीन और उसने स्विच प्रेस किया दबाया उसमें से फोकस निकला डॉक्टर मरीज से कहता उठ जाओ उठ गया क्या हुआ कहा अभी बताता हूं क्या हुआ उसने अंदर से फिल्म निकाली उसको धोया और फिर लाइट जलते हुए फोकस के सामने उसने देखा और कहा तेरे लीवर में टीवी का दाग है ऊपर से ना आग दिखाई दे रही है ना दाग दिखाई दे रहा कुछ नजर नहीं आता आंख में रोशनी है ट्यूबलाइट और बल्ब जल रहा है लेकिन ये आपकी जॉकेट आपका कुर्ता उस पर स्किन फिर उसके बाद गोश्त फिर हड्डी उसके अंदर लीवर कोई रोशनी बाहर की अंदर क्या है बता नहीं सकती लेकिन एक्सरे मशीन की रेस जब आपके चेस्ट पर पड़ी कुर्ता पहने हुए हैं जैकेट पहने हुए हैं स्किन है गोश्त है फिर अंदर बोन और हड्डी है और उस हड्डी के कवर के नीचे लीवर है उस लीवर के अंदर वो रोशनी घुसी और अंदर क्या है उस रोशनी ने सब बता दिया तो रोशनी एक जैसी नहीं होती है तुम्हारी आंखों की रोशनी और है और मेरे गौस की आंख की रोशनी और है तुम तो ऊपर की सिर्फ दाढ़ी देख लेते हो मुसलमान है पेशानी का काला घट्टा देख लेते हो मुसलमान है تھری فور پہن کے آیا، بولے سنت کے مطابق پہن کے آیا، لپٹ جھپٹ کر کے آیا، ہماری نگاہ کا یہ فیصلہ ہے. لیکن جب اللہ والوں کے پاس آتا ہے تو وہ ٹوپی اور ٹوپا نہیں دیکھتا، داڑھی اور داڑھا نہیں دیکھتا، تسبی اور تسبہ نہیں دیکھتا، یہ لمبے جھپے کرتے نہیں دیکھتا، تھری فور نہیں دیکھتا، وہ اندر دیکھتا ہے کہ سنی ہے کہ وہابی ہے، مومن ہے کہ کافر ہے. وہ صرف یہ نہیں دیکھتا کہ دلیپ پر جب شیخ جنید بول رہا ہے بہت اچھا بول رہا ہے، یہ طارق جمیل بول رہا ہے بہت اچھا بول رہا ہے، میٹھا میٹھا بول رہا ہے، ہم میٹھا میٹھا اور کڑوا کڑوا اللہ والے نہیں دیکھتے، بلکہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اندر میٹھا ہے کہ کڑوا، اندر صحیح ہے یا دیا بجھا ہوا ہے، اندر روشن ہے یا کالا ہے. ان کی نگاہ خدائی ایکس رے مشین کی ایسی ریزر ہیں جو اندر کو بھی دیکھتی ہے اور باہر کو بھی دیکھتی ہے. ایک شخص تھا جو یہودی تھا، اس نے یہ حدیث سنی کہ حضور فرماتے ہیں اتقوا فراست الایمان اتقوا فراست المؤمن، مومن کی ہوشیاری سے بچو، اس لیے کہ ینظروا بنور اللہ، دوسری روایت میں ہے بنور الایمان، کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. حضرت جنید بغدادی کی خدمت میں پہنچا اور کیسا بالکل مولوی طارق جمیل جیسا بن کے رہے، سارا ماڈل اس کا بالکل پرفیکٹ، ویسا رائے تم تو دیکھو گے اجسا مہم قرآن، جب تم ان کے ظاہری ماڈل کو دیکھو گے تو فرشتہ ہو جاؤ گے، واہ واہ یہ کوئی اور مخلوق ہے جو آسمان سے اتر رہے. لیکن اللہ والے اس فریب میں نہیں آتے، سمجھے. وہ گیا اور کہنے لگا یہ حدیث ہے حضور، اس کا مطلب بتائیے کہ مومن اللہ کے نور اور ایمان کی روشنی سے دیکھتا ہے، کیا مطلب؟ تو اندر اس کے زنار کی کپڑے کے اندر، اس ڈبے کے اندر، وہ زنار ایک جنے ہوتی ہے جو ان کا مذہبی نشان اور سیمبل ہوتا ہے، وہ اندر لٹکا ہوا تھا یہودی کا. تو حضرت مسکرائے اور فرمایا پہلے اندر سے اپنا زنار نکال کر کے پھر یہ مطلب. یہ اندر کی چیز دیکھ رہے ہیں. کہا حضور اب مطلب سمجھ میں آ گیا کہ جو مومن کامل ہے وہ صرف اوپر نہیں دیکھتا، اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. یہ تو تخلیقی روشنی ہے ہماری آنکھوں میں، اور جب رب کا وہ اللہ کا بندہ مومن کامل بن جاتا ہے تو اس کی آنکھوں میں صرف اس کی تخلیقی قوت کام نہیں کرتی، بلکہ صفت بصیر کی تجلی اس کی نگاہوں کو وہ اپنی آنکھ سے نہیں دیکھتا، اللہ کی صفت بصیر کی تجلی وہاں کام کرتی ہے. وہ اپنے کان سے نہیں سنتا، بلکہ اللہ کی صفت سمع، وہ سمیع ہے، اس کی تجلی اس کے کان میں کام کرتی ہے. تو دونوں میں ڈفرینس یہ ہوتا ہے کہ آنکھ جو ہماری ہے وہ اپنی حد اور اپنے ایریے کو کور کرتی ہے، لیکن جب وہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے تو اس کی آنکھ کی حد بندیاں ختم ہو جاتی ہیں، اب دور اور نزدیک کی ہر چیز کو اس طرح دیکھتا ہے جیسے کہ ہاتھ پر رائی کا دانہ. اس لیے غوث پاک فرماتے ہیں نظر تو الا بلاد اللہ جمال کفر دلت اللہ حکم الجسال. اب وہ صرف سامنے کی 50 اور 100 میٹر دوری کی آواز ہی کو نہیں سنتا، کہیں تو سرا میں اگر جوتی بھی چلتی ہے تو اس کے چلنے کی سچراہٹ کو اس کا کام سنتا ہے. اب وہ دور نزدیک کی حد بندیاں ختم ہو جاتی ہیں، اس لیے کہ اس کے کان میں ایک تخلیقی قوت کام کر رہی ہے اور ایک الہی قوت کام کر رہی ہے. اب وہ جب سنتا ہے تو ہزاروں میل پر جنگل میں ڈاکوؤں کے مرغے میں مریدین باشفا کا قافلہ گھرا ہوا ہے، اور جب کوئی چھٹکارے اور رہائی اور بچاؤ کا راستہ نہ ملا तो उस जमाने के भी सुन्नी यही कहते थे अल मदद या
गौस।
वहां से पुकारा अल मदद या गौस। यहाँ 300 मील के फासले पर जनाबे गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु अपने मदरसे में तशरीफ फरमा थे, उनकी आवाज सुनते हैं।
बेशक।
क्यों सुनते हैं? इसलिए कि अब वो हमारे जैसे नहीं हैं, अब वो ऐसे हैं कि तुम्हारे जैसे नहीं हैं, अब वो वैसे हैं कि हजारों में उनके जैसा कोई नहीं, लाखों में उनके जैसा कोई नहीं। अब वो कैचिंग पावर कितना परफेक्ट होता है कि 300 मील से पुकारने वाला पुकारता है और हजरत गौसे आजम अपने गुलामों की आवाज सुनते हैं। सिर्फ सुनकर के तिलमिला नहीं जाते, क्या करूं क्या करूं क्या करूं, समझे? अपने नालायक को इशारा करके जाओ, इसमें न कोई रॉकेट की मशीन है, न कोई पेट्रोल भरा, न कोई पायलट बना, न कोई मॉनिटर है जो खुद वो कंट्रोल करे, कुछ भी नहीं। रोजाना जिसको अपने पांव से रौंदते हैं, उस रौंदी हुई नालायक और जूतियों की करामत देखो, फिर गौसे आजम के पैर की अजमत समझो, फिर पैर वाले का मकाम समझो। वाह क्या मर्तबा है गौसे वाला, उनसे ऊंचो के सर से कदम
आते। बेशक बेशक।
इशारा फरमाया जा, आप अपनी बकरी को और गाय को बोले चली जा, तो जाएगी नहीं, पहले सिंह मारे। तुम्हारे घर का जानवर तुम्हारी बात नहीं मानता, और ये जूते चप्पल का खड़ाऊं गौसे आजम के इशारे को समझते हैं। ये खानकाह गौसियत का फैज है कि सूखी लकड़ी भी ये काम करती है। मुसलमान समझ, तू तो रूह वाला है, अगर शरीयत की इताअत नहीं करता तो अपनी हैसियत और स्टेटस को समझ। गौसे आजम रजी अल्लाह ताला उन्होंने इशारा किया और खड़ा हूं, उड़ी तुम्हारे प्लेन को जाने में देर लगती है, लेकिन ये गौसे आजम का राकेट हुक्म हुआ और जंगल में पहुंच गया। और जंगल में पहुंचा तो वहां तो मुरीद भी थे और दुश्मन भी थे, लेकिन खड़ाऊ को इतना शूर, इतनी समझ, ये पादरी कौन है और पादरी कौन वो इसको भी समझती थी। पादरी का लेवल लगा लेने से पादरी नहीं बनता, पादरियों के मजमे में रहने से पादरी नहीं बनता। खड़ाऊ एक सूखी हुई लकड़ी है, उसे भी ये डिफरेंट मालूम है कि इसमें पादरी कौन है पादरी कौन है। चुन चुन करके धनाधन धनाधन मार घूसा मार लाख फाइला तुम फाइला ऐसी पिटाही की है कि सारे डाकू उनको अस्थमा की बीमारी बन गई। ऊपर की सांस ऊपर, नीचे की सांस नीचे। ये मदद कौन कर रहा है? गौसे पाक की खड़ाऊ कर रहे, दुश्मन को भी जानती है, दोस्तों को भी जानती है। ऐ सुन्नी नौजवानों तलबा सुनो, पगड़ी बांध कर आया डाकू, समझ लो ये तारीख जमील है, ये अपना नहीं है। मारो लाहौर की खड़ाऊ, डालो उसके ऊपर, और ऐसो की तकरीर और स्पीच कभी मत सुनना, वरना गुमराह हो जाओगे। या तुम वैया हूँ, अगर तुम्हारे पास आए तो तुम हट जाओ, नहीं हटते हैं तो उन्हें भगा मारो, ये तुम्हारी जिंदगी हिफाजत का अंदाजा करो। अकीदे में ऐसे टनाटन हो जाओ कि सब टल जाए, ईमान कभी टलने वाला, उसमें जुम्बिश और लफ्ज़ आने वाली नहीं होना चाहिए। ईमान ऐसा मजबूत हो, ऐसा नहीं कि हमारे इंडिया में एक जगह है आगरा पर में, वहां के लोग हर चीज में हो बोलते, यस यस के माने हो। तो ऐसी पॉलिसी वहां पर बाद लोगों की है कि आप बोलोगे गाय भी दूध देती है तो बोले हो, और फिर आप बोलो बैल भी दूध देता है तो बोले हो, नहीं तो उनके है। अब हमने पूछा कि आप गाय दूध देती हो, बोले ये तो सही है, लेकिन बैल दूध देता है तब भी आप यस कहते हैं, क्या मामला? कहते इसलिए अगर हम इनकार करेंगे तो सामने वाले की दिल आजारी हो जाएगी। तो ऐसे लोगों को जवाब दो, गाय का दूध हम पिएंगे बैल का दूध? फिर पता चलेगा बैल का दूध कैसा होगा। ईमान हो हो कहने वाले का नाम नहीं है, ईमान उसका नाम है जो है हक है। बातिल है उसका इनकार कर दो, है तो है नहीं तो नहीं। जब इस मंजिल पर मुसलमान पहुंचता है तो वो औलियाए किराम के फैज से मालामाल। और अगर इसमें जरा भी पिलपिलापन आया तो समझो फैज का रास्ता आहिस्ता 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 बंद होता है और हर तरफ अंधेरा आ जाता है। परवरदिगार आलम हमें कूनु महसाजीन के जलवे से हमेशा मुस्तमीर फरमाए और माला माल फरमाए। अल्लाह वालों की दोस्ती हमारी जरूरत है, अल्लाह वालों से मोहब्बत हमारी आखिरत की जरूरत है, अल्लाह वालों से प्यार हमारे कब्र की जरूरत है, हमें यहाँ भी जरूरत है वहाँ भी जरूरत है। इसलिए अल्लाह ताला फरमाता